जय राधव कुंज बिहारे
यह प्रवचन श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के द्वारा श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 4 श्लोक संख्या 6 पर 28 दिसंबर 2016 को इस्कॉन गाजियाबाद में दिया गया।
गोपी जाना बाला भाधारी भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्ण
इस श्लोक में सुधेन कर्मणा सब महत्वपूर्ण है। यदि कोई कार्य भक्ति से नहीं किया जाता तो वह गुणों से दूषित हो जाता है। भगवत गीता में इसकी व्याख्या यज्ञ अर्थात कर्म रूप कर्म के रूप में की गई है। जो कर्म श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं वो ही सुध है और वे ही गुणों से कलुषित नहीं होते। अन्य सभी कर्म सतो तथा रजोगुणों के द्वारा दूषित हो जाते हैं। इंद्रियों की तुष्टि के लिए संपन्न समस्त कर्म दूषित होते हैं, किंतु महाराज नाभि ने ऐसा कोई दूषित कर्म नहीं किया। यहाँ तक कि यज्ञ के समय भी दिव्य कर्म ही किया था, इसलिए उन्हें पुत्र रूप में भगवान की प्राप्ति हुई।
जैसे पांडे श्लोक
कहा अगर तुम्हें मेरे जैसा पुत्र चाहिए
ये तो असंभव है, भगवान जैसे पर नहीं, मैं पुत्र बन जाता हूँ भगवान प्रकट हुए ईश्वर देव के रूप में, ईश्वर देव का संस्कृत में आता है, ईश्वर का आता है सबसे प्रसिद्ध सबसे अच्छा भगवान प्रकट हुए ईश्वर देव। तो यहाँ कहा जा रहा है भगवान कैसे कृपा थी, मेरे बड़ी गहरी तपस्या थी, भगवान प्राप्त हुए उस रूप में। तो शास्त्र में कहा गया है कि तपस्या बिना जीवन अधूरा है। आप मेरे शास्त्र में तपस्या का शब्द का वर्णन अनेक श्लोकों में प्राप्त करते हो। जैसे उदाहरण के लिए भगवान जी कहते हैं तीसरे स्कंध में जैसे तपस्या और प्रति भागवत भगवान के अनेक नाम है और लाख नाम है भगवान के, इनमें एक है अधोक्ष। अधोक्ष का अर्थ है इसे समझना प्राप्त करना आसान नहीं है। भगवान जी कहते हैं भगवान को प्राप्त करना आसान नहीं है, तपस्या के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हो। और भगवद गीता के 18वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि तीन चीजों को कभी नहीं दिया जाना चाहिए, यज्ञ है भगवत प्राप्ति का साधन। साधन है भगवान के नाम दान, अनेक प्रकार के दान आप दे सकते हो। सबसे उत्तम कोटि का दान है दान भगवान की सेवा के लिए, और इन प्रकार के दान में सबसे ऊंचा दान है भगवान के संदेश का प्रचार, ये भी दान है। जैसे आप घर प्रचार में जुड़े हो मान सम्मान के लिए सबसे ऊंचा दान है तपस्या। भगवद गीता में भगवान जीव की तपस्या, मन की तपस्या और शरीर की तपस्या चर्चा करते हैं। शरीर की तपस्या के विषय में कहते हैं एक तपस्या शरीर की है उसका उपयोग करो ब्राह्मणों की सेवा में, भगवान की सेवा में ब्रह्मचर्य का पालन करो इत्यादि। दूसरे शब्द में शरीर की तपस्या क्या है, शरीर पर सलाह किसका मोबाइल आई है, सलाह उपयोग करो भगवान की सेवा में। वाणी की तपस्या क्या है, जीव की सत्य करता उच्चारण करो, कभी कभी बड़ा कठिन है ये सब कुछ हिंदू में किया। और वाणी द्वारा भगवान के नामों का उच्चारण, भगवान की नाम का कृष्ण लता की चर्चा, ये जीव की तपस्या। मन की तपस्या क्या है, मन द्वारा सदा भगवान का चिंतन करो, समाज का स्मरण करो। तो तपस्या के माध्यम से आप भगवान को समझ सकते हो। तुम्हारे नानी ने देखा कि भगवान प्रकट हो चुके हैं ऋषभदेव के रूप में, और ऋषभदेव जी का शासन जब आरम्भ हुआ प्रजा जो थी अत्यंत सुखी। हमारे वैदिक शास्त्र के अनुसार सरकार होनी चाहिए राजा की, आजकल डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी में क्या कहते हैं राष्ट्रपति सरकार, जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति बन गया, सारे अमेरिका दुखी है तो ये है कलयुग का लक्षण। तो प्राचीन समय में राजा थे, राजा भी थे और ऋषि भी थे, इसे उन्हें कहा जाता था राजऋषि। जैसे कि आज के आने हम राम राज का स्मरण करते हैं, क्यों करते हैं राम राज्य का स्मरण? राम नंदन के शासन के समय पूरा समाज सुखी था, समाज में किसी प्रकार का कष्ट नहीं था। ऋषि के समय में व्यक्ति खुद चुन सकता, इसी प्रकार हमारे शास्त्रों में अनेक उदाहरण। भगवान ऋषभदेव जब शासन आरंभ किया, उनका प्रजा का व्यवहार था जैसे पिता का होता है गुलाब के साथ। प्रजा अपने सुखी थी, भगवान ऋषभदेव नाभि ने देखा कि भगवान ऋषभदेव का शासन में लोग सुखी है। नाभि उनकी पति मेरु देवी चले गए पति का आश्रम हिमाचल में, उनके 100 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़े बेटे का नाम क्या था?
भारत।
और महान भारत के शासन के समय प्रजा इतनी सुखी थी, किसी प्रकार का कष्ट नहीं था समाज में। आज के वातावरण में क्या देखते हो? कष्ट ही कष्ट। भगवतों में आजकल बाहर के किसी को मैं क्या हो सब नोटबंदी की चर्चा कर रहे तो भगवतों में कहा गया है कि कलयुग में सरकार का ये भाव रहेगा, कर ही कर लगाओ, एक कर लगाओ, एक कर, एक कर, यही भाव रहेगा। ये देखो किस प्रजा से ज्यादा कर हमें कैसे मिल सकता है, वहां को ही देखेगा सारे विश्व। तो इसने भी इस मौके से थे कुमार भारत के साथ में इतना अच्छा पूरे पृथ्वी का नाम था भारत। ऋषभदेव ने अपने 100 पुत्र के माध्यम से हम सबको बड़ा महत्वपूर्ण उपदेश दिया। भगवान ऋषभदेव ने कहा, आई एम देहा देहा बाह्यम लोके, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है जिसके बुद्धा जी ने अनेक समय उपदेश दिया। भगवान ऋषभदेव कह रहे हैं, हे मेरे प्रिय पुत्र, ये मनुष्य जीवन है बहुत दुर्लभ है, इसलिए पशु के समान उपयोग मत करो। अंधेर अंधेर बाद आप पूछोगे तो फिर हमें इसे क्या करना चाहिए? क्या कहते मनुष्य चले तपो देवियों को सकता ये तपस्या उठाओ, इसलिए भगवान की खुशी करें। वैसे देखा जाए भौतिक समाज में भी तपस्या नहीं, आज के वातावरण में इतना ऊंचा पोल्यूशन लेवल है, रहना कोई काम काम है, ये भी बहुत बड़ी तपस्या। महंगाई के जमाने में कई बार लोगों को दो दो तीन दिन नौकरी करनी पड़ती, भारत में नहीं अमेरिका में, अमेरिका में भी आर्थिक स्थिति लोगों की इतनी अच्छी नहीं है जितना आपको हॉलीवुड द्वारा देखता है। कहीं पर दो दो तीन दिन नौकरी करनी पड़ती है, 7 दिन आते हैं, केवल खर्चा चलाने लगे। तो ये भी तपस्या है एक दूसरे नोट चले गए वो भी परेश्वर भी कह रहे हैं सबको धीमियम पुत्रता, तपस्या करो भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान की खुशी के लिए, अभी अहमियत ठीक है नहीं, एक रूप से अहमियत ठीक के कारण जुड़ने में भी तो पैसे करने पड़ते, पैसे कमाने पड़ते, कि पैसे कमाए बिना तो अहमियत इतनी खराब नहीं होती। सच बात है तो पैसे कमाने पड़ते हैं, पैसे में खर्च जाते हैं। भगवान ने जब कह रहे हैं इस प्रकार के तो पैसे नहीं, तो देवी उनको सजा आप तपस्या उठाओ भगवान की खुशी के लिए, हमारी खुशी के लिए नहीं। भौतिक उपासना, भौतिक समाज में हमारा भाव क्या है? हमारी खुशी में भगवान की खुशी। तो जब आप तपस्या करके भगवान की तमाम भाव रहेगा, हमारी खुशी में हमारी खुशी। आप तपस्या करो भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो कई बार लोग पूछते हैं अगर हम ये तपस्या करेंगे इसके बदले में हमें क्या मिलेगा, कई बार लोग आपसे पूछते होंगे तुम हरे कृष्ण मंदिर जाते हो उसके बदले में हमें कुछ मिल रहा क्या? पूछते लोग तुमने हरे नाम शुरू कर दिया कोई धंधा मिल रहा है कोई तो तपस्या क्या करो, चाहे जीव द्वारा हो मन द्वारा, मन की तपस्या है, मन द्वारा थोड़ा भगवान का चिंतन करो, भगवान का स्मरण करो। तो इस तपस्या के बदले में कुछ लाभ होता है हमें या नहीं? आप लोग तपस्या करते हो, सुबह जाते हो 4 बजे, सुरवाना करते हो, चार नियम का पालन करते हो। चार नियम का पालन करना इस शरीर में इतना आसान नहीं है, आप करते हो तो उसके बदले में कुछ मिलता है? इसके बदले में आपको आध्यात्मिक सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। अगर आपको आनंद नहीं मिलता तो आप क्यों जुड़ते कृष्ण भक्ति में? तो भौतिक कार्य द्वारा जो आनंद मिलता है वह स्थायी है, वह असली आनंद है। जैसे कि प्रधान महाराज कहते हैं लोग ये नहीं जानते कि असली सुख कैसे प्राप्त होगा, ये नहीं जानते। लोग अज्ञान में, अज्ञानता में जन्म होता है, अज्ञानता में हम पलते हैं और अक्सर अज्ञानता में ही मृत्यु हो जाती है। शुरू से अंतर हम रहते हैं अंधकार में, पर आपका सौभाग्य हो तो आप किसी भक्त को मिल सकते। चेतने मालूम ने प्रभु स्वामी से कहा तो मान्य मम्मी देखो ना भगवान जी गुरु कृष्ण के बाबा है, अनेक योनियों में गुजरने के पश्चात वो भाग्यशाली व्यक्ति है जिसे क्या प्राप्त होता है? भक्ति का वेग, भक्ति का वेग। जैसे आप सब जो यहाँ उपस्थित हो आप सब किसी न किसी को मिले, किसी भक्त को मिले, किसी ने आपको ज्ञान दिया है, किसी ने आपको भक्ति की महिमा का ज्ञान दिया, किसी ने आपसे कहा कृष्ण भगवान सर्व भगवान है, जीवन का उपयोग करो भगवान की सेवा, भक्ति का वेग मिला, भक्ति की महिमा का ज्ञान मिला। तो ये जो बीज है केवल बीज प्राप्त करने से काम नहीं करेगा। आप कितना भी अच्छा बीज ले आओ, बीज कब होता है? जब आप उसे पानी देते हो, पानी पिलाते हो। तो चेतन महाप्रभु ने कहा ये क्या भक्ति बीज हो गया, तो आप उसे श्रवण और चेतनम कर दे अनित्र हो गया। तो अन
कई जनों के पश्चात भाग्यशाली व्यक्ति है जिसे भक्ति की महिमा का ज्ञान प्राप्त हो रहा है। हम लोग एक प्रार्थना एक मंत्र का उच्चारण करते हैं, ओम ज्ञान तिमिरंदस्य। हमारा जन्म हुआ था अज्ञान का मैं, ओम ज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञान जना चल गया किसी गुरु साधु की संबंध से हमारा अज्ञान का दूर हो। तो जो भाग्यशाली व्यक्ति है उसे यह भक्ति का बीज प्राप्त होता है। जैसे हम प्रचार में जाते हैं, आप जब प्रचार में जाते हो और लोगों में हृदय में बीज बो रहे हो, आप किसी को किताब ले कई बार लोग पूछते हैं जल्द जुड़े जल्दी से लोग सकते हो हमारे क्यों का गीता के 18वें अध्याय में सब भक्तों में सबसे पहले कौन है ना हो क्यों ये भगवान की हानि की इच्छा है कि सारे भक्त जीव उनके धाम में लौटे। ये परम भगवान को पता है भौतिक संसार में कोई सुख नहीं, इस भौतिक जगत का एक और नाम क्या है कुंतलोक का अर्थ है क्लेश हम इतने सफल हैं, इतना सुंदर घर का वातावरण है, कहां क्लेश ये सब दो दिन जुड़े हम देख सकते हैं। समय के साथ हर चीज नष्ट हो जाती है। समय जो है हर चीज को नष्ट कर देता है। आज आपका शरीर बड़ा खूबसूरत है, सब आप लोग आपको तारीफ कर रहे हो, सो ब्यूटीफुल सुबह की लाइट मिल पाए सब तक ये खूबसूरती रहेगी। पहलवान हो एक अमेरिका का वर्ल्ड चैंपियन है, कैसे इसको ले थोड़े समय हम देख सकते हैं ध्यान देंगे ऐसी सोच चाहिए। एक ही उपाय है वो है ईश्वर में, ये था भगवान ईश्वर देव का संदेश। भगवान ईश्वर देव ने कहा कि हे प्रिय पुत्र, पुत्रों के माध्यम से पूरे मानव समाज पर शिक्षा दे रहे हैं, तुम सब तपस्या करो भगवान की खुशी के लिए और इसके बदले में तुम्हें आध्यात्मिक सुख मिलेगा जो कि केवल बढ़ते ही जाए। भौतिक सुख का क्या अनुभव है, ये भौतिक सुख मिलेंगे किसी कार्य के द्वारा और ऐसे ऐसे कम हो जाता है। आध्यात्मिक सुख जो है वो केवल बढ़ते जाता है। शिष्य बता दे किया था अति संबंधित ग्रंथों की रचना करने के लिए, स्वयं चैतन्य महाप्रभु केवल 8 श्लोक छोड़ रहे जिन्हें हम शिक्षा से अभिनाम में जानते हैं और लगभग इस काम के हर मंदिर में आपके मंदिर में भी आज मंदिर की बात सुना मैंने शिक्षा से का उच्चारण होता है। तो शिक्षा से पहले श्लोक में वहां पर उन्होंने शिक्षा देते हैं यही नाम क्या लाभ, आइए आप भी जानना चाहोगे। आप लोग कह रहे हो हरी नाम करो तो इसके बदले में क्या लाभ है, वो क्या कहते हैं एक लाभ ये है हरी नाम के उच्चारण से ये कहते हैं मैं है काम करो सबके हृदय में मैं है, चाहे आप गाजियाबाद के वासी हो या प्रजाति हम सबके हृदय में मैं है। उच्चारण से मैं और आप खुद अनुभव कर सकते हो जिस दिन आप ध्यान पूर्वक जाप करते हो, शास्त्र पढ़ते हो, आपका ध्यान एक उत्साह पूछा रहता है, सच बात है। अगर जापने में थोड़े ढीले हो जाओ तो क्या देखते हो, माया के प्रति उत्साह बढ़ जाता है और भक्ति के प्रति उत्साह कम जाता है। आपका भगवान जब ध्यान से जाप करो इत्यादि, भगवान फसल देते हैं माया फसल, और जब आप नहीं करो तो उल्टा माया फसल बन जाती है भक्ति फसल। तो आगे चेतन महाप्रभु ने कहा आनंद पूरी भजना, इस महामंत्र के जानने से जो आनंद है ध्यान आनंद केवल बढ़ते जाते। ये संदेश और इसलिए वह संदेश एक ही है, हमारे इसलिए ने कहा अगर तुम तपस्या करोगे भगवान की खुशी के लिए, इसके बदले में जो सुख मिलेगा वो केवल बढ़ते ही जाएगा। आप तो कई बार लोग कहते हैं हम इतने सालों से जाप कर रहे हैं पर हमारा भौतिक आकर्षण नहीं टूटता, इतने सालों से जाप कर रहे हैं तो जो आनंद अनुभव होना चाहिए नहीं करते। कई बार हम जाप कर रहे हैं मैकेनिकली कर रहे हैं, कोई भाव नहीं, आनंद ऐसे विचार आते हैं करते। तो अगर पूरा आनंद अनुभव नहीं हो रहा जैसे दोष हमारे में रूप से नहीं कर, तो चेतन महाप्रभु कहते हैं भगवान शिवदेवी की शिक्षा है बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाबा जी अनेक समय इन श्लोकों पर लेक्चर दे रहे थे, हमारे सुने में कहा है संतों की सेवा करो, संतों की संगत में रहो, इस विषय पर भी शास्त्रों में बल दिया जाता है। जैसे कि जब ध्रुव महाराज भगवान ने बड़ी तपस्या उठाई थी, भगवान को प्रसन्न करने के उन्होंने अपमान महसूस किया था जब उनकी सोते हुए रोका पिता की गोद में बैठने से, भगवान ने बड़े प्रसन्न हुए दोनों की तपस्या से उन्होंने निभाई थी नारद मुनि जी की शिक्षा के आधार पर। तो उन्होंने उनसे पूछा ध्रुवा तुमने इतनी तपस्या उठाई मांगो में से क्या वर चाहिए तुम्हें मांगो। ध्रुव ने कहा अगर आप मुझे कोई वर देना चाहते हो तो ऐसा वर दीजिए कि मैं सदा उत्तम भक्तों की संगत में रहूं, सदा चौबीस घंटे उत्तम भक्तों की संगत में रहूंगा, उनके ज्ञान की प्राप्ति से बहुत सारे के पार जाती हूँ, तो उत्तम भक्तों की संगत। फिलहाल महाराज से भी भगवान ने पूछा था मानो मैंने क्या हो रहा थे मेरे कारण तुम्हें इतना खर्च हो गया पड़ा, राह में तो कोई दोष नहीं था, बचपन से आपने कहने थे पिता के निकाह में एक दोष था उनका आकर्षण था उनके शत्रु के प्रति। तो भगवान ने उनसे कहा मेरे कारण इतना खर्च हो गया पड़ा मानो क्या, उन्होंने कहा अगर आप मुझे कोई वर देना चाहते हो कोई ऐसा वर दीजिए मैं सदा उत्तम भक्तों की संगत में रहूं। ये शास्त्रों पर भगवान ऋषभदेव ने कहा कि भक्ति में बढ़ने में भक्तों की सेवा उत्तम भक्तों की संगत में रहो उनकी सेवा करो। साधु संग शब्दों में तीसरे पढ़ते हो, उनकी माता देवोदी, देवोदी को पता कि मेरा बेटा हमारे यहाँ अवतार है, पूछा तुम्हें आध्यात्मिक नेत्र हो, शिक्षा दो कैसे, बोले इंसान के कष्ट से छुटकारा प्राप्त हो सकता है। हिमाचल प्रदेश में कपिलानंद ने कहा भक्ति के माध्यम से, माता ने पूछा भक्ति के क्या लक्षण है, उन्होंने शिक्षकों का उच्चारण किया, दीक्षा कर भी कहा शिव दर्शन नहीं है, मुझे दर्शन दर्शन कर साधु साधु पूछना। आगे जाकर उन्होंने कहा कि ये ज्ञान प्राप्त होता है भक्तों की संगत में रहे, तो शास्त्रों में यही विषय की चर्चा बार बार की जाती है। आप शास्त्र देखते हो जो महत्वपूर्ण विषय हैं उनकी चर्चा बार बार की जाती है। कृष्ण भक्ति को स्वीकार करो, हरि नाम को स्वीकार करो, माया से बचो, लगभग हर तात्पर्य में महत्वपूर्ण विषय को वर्णन होता। आप कुछ लिखियो कि प्रभुपाद जी गीता में कहते हैं रिपीटेशन इज नेसेसरी टू ड्राइव द पॉइंट होम। बार बार बोलने से हमारे हृदय में संदेश पैदा होता है, हमारी स्थिति देखनी कमजोर है कि बार बार सुनने से भी हमें बड़ा असर नहीं पड़ता। कहते बार बार सुनते माया खराब है, बच्चे की असर नहीं पड़ता। भगवान ऋषभदेव ने कहा साधु संग में रहो। आगे उन्होंने कहा नूनम प्रवदा कृते कर्म, जो व्यक्ति शास्त्र के विपरीत कार्य करता है भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए वो कमक है, पागल है, मूर्ख है, अज्ञान है। क्यों? वो व्यक्ति ये नहीं जानता क्योंकि जो अध्यय आज से प्राप्त हुआ है केवल कष्ट कष्ट दे रहा है। अज्ञान तो हम सोचते हैं ये देह हमें भौतिक सुख देगा, कहाँ है सुख? अज्ञान तो हम सोचते ये सुख है। आज समाज में की जो प्रजा है इतनी विकसित है, मैं पता नहीं क्या करना चाहिए। आज कल भारत के जो स्कूल हैं और महाविद्यालय हैं वहाँ ड्रग वगैरह का कल्चर बहुत ही कॉमन हो गया है। लोग खोज रहे हैं शायद इसके द्वारा हमें अति सुख मिलेगा। भगवान ऋषभदेव कहते हैं कि आज जो देह है वो आपको कष्ट दे रहा है और अगर आप वही कभी कार्य करोगे तो फिर से देह प्राप्त होगा तो क्या देगा आपको? कष्ट कर देगा। तो शास्त्रों के द्वारा हमें ये शिक्षा बार बार दी जा रही है। ज्ञान शरीर जी को उपदेश है 34 खंड में, पृथ्वी महाराज का उपदेश था जो शिष्य कुमार के साथ लगभग हर स्कंद में हर श्लोक में भगवंदा को ये महत्वपूर्ण संदेश दिया जा रहा है। जैसे मैं प्रथम स्कंद में पढ़ा व्यास देव में सारे छात्रों की लोगों की चर्चा की थी, उनके संगठन को प्रस्तुत किया था सार रूप में। जब भी उन्हें लग रहा था कि मेरे रचना में कुछ कमी है पहुंचे भक्ति का ज्ञान दिया, तो आज अगर समाज में किसी चीज की कमी है जैसे कि हमारे परम गुरु भक्ति सिन्हा में भी कहते थे किसी की कमी है, किसी की कमी है, ज्ञान की कमी है। भौतिक ज्ञान तो खोने पर भी प्राप्त हो रहा है। कहते हैं हॉस्पिटल और कॉलेजेस उसको सबसे अच्छा धंधा है, तो भौतिक ज्ञान की कमी नहीं है, उन्हें कोई ना कोई कोचिंग क्लास कॉलेज है, आध्यात्मिक ज्ञान की कमी है, लोग ज्ञान तब है, और इस ज्ञान तक को दूर करने के लिए इस प्रचार की तारीख पर बल दिया जाता है। चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे और एक ब्राह्मण करुणा के घर में रहे, करुणा ब्राह्मण ने बड़े उत्साह के साथ उनका स्वागत किया, उनके चरण धोए, उनसे कहा मैं आपके साथ चलना चाहता हूं, छोड़कर मुझे अपने साथ ले चलो, धन निराशा कचहरी है। ना तो बोले कहा क्योंकि ऐसा आश्रम मेरे पति की मुलाकात थी, तो वहां पर बोले नहीं घर में ही रहो, भाई नाम करो, गीता दवर के संदेश का पालन करो, इस प्रकार तुम सलाह मेरे कर रहोगे तो मैं सलाह समझता। वहां तो वो कुर्मा ब्राह्मण के घर में रहकर चल पड़े थे, जब एक और भक्त बैठा वासुदेव अभय पर जिन्हें सूचना मिली वहां का वो कुर्मा ब्राह्मण के घर में है, वो तुरंत भागे भागे आए उन्हें मिलने के लिए, जो पहुंचे उन्हें तो नहीं पता लगा वहां पर चल पड़े हैं। जो वासुदेव बेटा भाग था चला बेटा उन्हें खोल की बीमारी थी, पूरा शरीर भरा हुआ था पूंजियों के साथ बस के साथ, बेटे दयालु थे, जब पलखी दादा शरीर थे उसे पकड़ कर वहां पर शरीर में छोड़ देते थे, तो जब वो पहुंचे कुर्मा ब्राह्मण के घर में उन्हें सूचना प्राप्त हुई वहां पर उछल पड़े आप भगवान कल्याणी है, स्वयं भगवान है, वो समझ गए उनके भक्त आए हैं। वहां पर तुम लौटे, जब लौटे तो उन्हें गले लगाया, गले लगाया तो उन्हें जो खोल की बीमारी थी तुरंत समाप्त हो गई, और उनका जो बचपन का शरीर था तुम समझ गए कि ये संभव हो रहा है किसी के पास है। उन्होंने उस श्लोक का उच्चारण किया जिसका उच्चारण सुदामा ब्राह्मण ने किया था, सुदामा ब्राह्मण की कथा दस स्तंभ में पढ़ते हो, सुदामा ब्राह्मण गरीब ब्राह्मण थे, जय भगवान मिलने द्वारा में तो कुछ मांगे बिना वापस लौट आए। रास्ते में सोच रहे थे अरे प्रिय मित्र को तो मिला, पत्नी ने कहा था जाओ मेरा मेरा तुम्हारा धनी मित्र है, तो मैंने कुछ मांगा भी तो भगवान का धनी आने है, जब वो लौटे तो उन्होंने क्या देखा उनकी सारी कुटिया बन गई थी, पति जो थी पति की साड़ियां पहन दी थी सजी हुई थी रेशम की साड़ी में, तो उन्होंने कहा मैं दोनों यही ब्राह्मण मैं मित्र है नहीं भगवान उनकी कृपा से प्राप्त हो, तो वास्तव ने उसी श्लोक का उच्चारण किया। उसके पश्चात उन्होंने एक प्रश्न पूछा महाप्रभु से, उन्होंने पूछा पहले मेरी स्थिति ऐसी थी कि अगर मैं सड़क की बाएं तरफ था सब दाएं तरफ हो जाते, राजा की कृपा से मैं इतना खूबसूरत बन गया हूं, युवक बन गया हूं, कहीं मेरे मन में घमंड नहीं आ जाए, मैं भाव यदि हम समान में कर लेते कोई धनी हो बहुत ही खूबसूरत हो बहुत ही पढ़ा लिखा हो इत्यादि तो हम धनी बन जाते हैं। तो ये था प्रश्न महाप्रभु ने कहा सदा हरि नाम का उच्चारण करो और हरिनाम महिमा का प्रचार करो गीता भागवत के संदेश को अपनाओ संदेश का प्रचार करो। इस प्रकार सदा मन में नम्र का भाव रहेगा तुम कभी भी मेरे पिता नहीं हो। तो इस लीला के तात्पर्य में शिव प्रभुपाद कहते हैं कि जैसे कि वासुदेव पिता का उद्धार हुआ वैसे संसार के हर भक्त का उद्धार हुआ है। आपको आलोकों में लगता है आलोकों में लगता है कि आपको भी उद्धार हो रहा है उनका कर्तव्य बनता है कि वो दूसरों का भी कि वो दूसरों का भी उद्धार करे। तो प्रभु आगे कहते हैं इसलिए हर बात को हर घर जाकर लोगों से मिलती करनी चाहिए। गीता के समय को अपनाओ भगवतम के समय को अपनाओ। ये था महाप्रभु का भी आदेश जैसे आप चैतन्य भगवत में पढ़ते हो एक दिन चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद हरिदास को बुलाकर कहा नित्यानंद हरिदास घर घर जाओ एक संदेश दो सबको। क्या था वो
संदेश
बोलो कृष्ण बोलो कृष्ण हरे कृष्ण बोलो कृष्णा का अर्थ है क्या है कृष्ण का नाम लो बाजो कृष्ण का अर्थ है कृष्ण की उपासना करो उनकी आचार विद्या की पूजा करो। खोलो कृष्ण शिक्षा कृष्ण की जो शिक्षा है कहा है कृष्ण की शिक्षा भगवद गीता में क्या है भगवान का आदेश श्री भगवान वाचा परम भगवान बोल रहे हैं क्या सनातन संदेश किसके लिए पूरे मानव समाज के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा घर घर जाकर तुमसे लो कृष्ण का नाम लो कृष्ण की उपासना करो और कृष्ण के शिष्य करना। इतना ही महाप्रभु ने कहा आगे महाप्रभु ने कहा मुझे आगे बताओ शाम को क्या तुम्हारा नतीजा है प्रचार का नतीजा था क्या नतीजा था। उन्होंने केवल ये नहीं कहा जाओ प्रचार करो जैसे प्रभुपाद जी भी कहते थे कई बार शाम को जब हम लोग मिलते थे क्या था प्रचार का है प्रचार की क्या करता है रोज रोज स्कोर पढ़ते ना भगवान मिले इसलिए इतना पा रहे इतना ये 100% निर्भर है महाप्रभु के ऊपर। महाप्रभु ने प्रचार करो मुझे आगे बताओ क्या जो है प्रचार का महाप्रभु के आदेश के अनुसार नित्यानंद हरिदास ने प्रचार का कार्य शुरू किया। उन्होंने सन्यासी के वस्त्र पहने और घर घर जाना आराम कर दिया। कई घरों में गए उनको बड़ा अच्छे उत्साह से स्वागत किया। लोगों ने कहा सन्यासी आ गए हैं हमारे घर को पवित्र बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं आपसे कुछ खाइए प्रसाद। तो कहते नहीं यहाँ खाने में कुछ नहीं चाहिए हम केवल एक संदेश लाए हैं आपके लिए संदेश क्या था, बोलो कृष्ण। तो कहीं ने तो तुरंत ही स्वीकार कर दिया, कहा शुक्रिया हमने ये संदेश पहुंचाने के लिए। कई घरों में वो गए, लोगों ने उनका विरोध किया, लोगों ने कहा माए खुद तो पागल हो गया है, इनको भी पागल बना दिया, अभी हमें पागल बनाने के लिए नहीं महात्मा ने अपना संपीड़न आंदोलन आरंभ किया, सबने साथ नहीं दिया, कई इन्होंने साथ दिया, कई तो कई हिंदू ब्राह्मण ने भी शिकायत की, अरे ये तो नया धर्म दे रहा है, यहाँ हिंदू धर्म नहीं, क्यों इस माता ब्राह्मण की आमदन कम हो रही, में तो कोई ब्राह्मण की जरूरत नहीं है, बाकी यज्ञ में तो ब्राह्मण के लिए यज्ञ होता है, अहिना मुझे तो आपको एक पैसा खर्चा नहीं पर इनकी आमदन में नुकसान आ रहा था, तो वो भी विरोध कर रहे थे। मुसलमान है वो कह रहे थे रोको दिमाग के संपीड़न को, हम सब मुसलमान हिंदू बन जाए। एक मुसलमान दाढ़ी वाला बार बार काजी के पास जाकर शिकायत कर रहा था, रोको रोको रोको, उस काजी ने कहा तुम दिन रात आकर शिकायत करते हो, रोको रोको दिमाग का आंदोलन को, जब भी मैं देखता हूँ तुम, मैं देखता हूँ तुम्हारे नाम बोल रहे हो, क्या नाटक है। ये बात सच है, जब से मैंने हाई नाम सुना है ये जीव से निकलता ही नहीं, बहुत कोशिश की निकल रही निकलता ही। तो कईयों के घर में जब चैतन्य महाप्रभु गए दरवाजा नहीं खोला, जब चैतन्य महाप्रभु ने अपने संपत्ति आंदोलन शिवधाम में शुरू किया था तो हरे को बताने का अधिकार नहीं था, महाप्रभु भी अद्भुत लीला प्रकट कर रहे थे और केवल उनके फिकर प्रिय निकट के भक्त है उन्हें ये सुविधा दी गई थी। तो उन्होंने कहा जब हम आए थे और उनका दर्शन ले रहे हैं हमें अंजाने नहीं दिया, हम हमें नहीं आने क्या होने और कई घरों ने लोगों से कहा ये तो जासूस है सन्यासी के वस्त्रों में, आए देखने के लिए घर में क्या है और फिर चोरी करने। जब ऐसे कहते थे महाप्रभु हंसते थे, महाप्रभु ने लोगों का भक्तों का कहो कृष्ण तुम्हारा असली प्राण है, कृष्ण तुम्हारा असली प्राण है। तो ये था महाप्रभु का अभ्यास। हम भी जब प्रचार करते हैं आपको भी इसी प्रकार का अनुभव होगा, कई स्थान में आप जाते हो लोग कहते हैं हम लोग हर साल गीता जयंती पर आपकी राह देखते हैं, कब आएंगे राज्यपाल मंदिर के प्रतिनिधि हमें गीता प्रचार देखते हैं, आपका बड़ा हार्दिक उत्साह का स्वागत करते। कई लोग हर साल तरसते हैं ये सेवा करने के लिए गीता पढ़ने का, कई संसार में आप जाते होंगे आपका पानी होता है और लोग ये भी कहते होंगे और कोई काम धंधा नहीं है। तो हमारे के जो प्रचारक हैं उन्हें हर स्थिति का सामना करना पड़ता है और जितनी कठिना की सेवा उतनी ज्यादा कृपा। जैसे आज तो लोग कह रहे लोग खाना दे रहे हैं नोटबंदी हो गया और क्या पैसा जीती सड़कों में तो उतना ट्रैफिक नहीं होता है, तो थोड़ा एक दूसरे आप कह सकते हो प्रचार की सेवा थोड़ी कठिन सेवा है। कठिन सेवा ही दृष्टि से हर व्यक्ति तुरंत साथ नहीं दे रहा, पर हम प्रयास करेंगे तो प्रयास है प्रश्न होते हैं। तो ये प्रचार की सेवा है जो लगभग सब सौंपी जाती है, ये सेवा है भगवान की इच्छा को पूरा करने के लिए। कहते हैं हे भगवान मुझे भगवान कहीं जाने वाली जंगल में जाते हैं पहाड़ों में जाते हैं कहीं मोन रखते हैं बोलेंगे नहीं, मैं ना जंगल में जाना चाहता हूँ ना पहाड़ों में ना मोन रखना चाहता हूँ। बाबा जी कहते थे असली मोन व्रत है द्वारा केवल कृष्ण का नाम लेना। तो प्रभु जी मैं चाहता हूँ कि सबका उद्धार हो, तो इस भाव के साथ उनका प्रचार में जुड़ते हैं। क्या भाव? ये भगवान की इच्छा है, महाचार्य की इच्छा है, प्रधाननाथ की इच्छा है, चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है। कई बार लोग कहते हैं रामानंद भाव ही नहीं जो प्रहलाद महाराज ने था आनंद भाव ही, तो केवल सुनने से वो भाव अनुकूल हो जाएगा। ये सुनोगे 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 बार बार भाव अनुकूल होगा। तो ये जो प्रचार की सेवा है जिस पर इतना बल दिया जाता है, ये सेवा है भगवान की प्रशंसा करें। और जब हम ग्रंथों को बांटते हैं हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर हमें 30,000 गीता बांटी दिसंबर गीता जन्म के उपरांत तो अगले महीने 30,000 नहीं भरता जाएंगे, 30,000 भरता जाए तो अखबार में रखने की जरूरत नहीं, समय लगता कई कई किसी ने 10 साल पहले गीता ली थी कभी खोला में नहीं और खोला पढ़ना शुरू किया और जीवन शुरू किया। और इसके बाद किसी नाम मैंने इस सेवा का क्या नाम लिया था विहार कीर्तन सारा कीर्तन स्वागत का ये बुक्स आर ऑल्सो कीर्तन, ये ग्रंथ की सेवा है कीर्तन है। क्यों? या प्यार करे ग्रंथ द्वारा कृष्ण की महिमा का देश करे। तो आप सबसे ये निवेदन था कि आप सबने जिम्मेदारी उठाई है ये साल 30,000 गीता बांटने की, और ये सेवा जो है अत्यंत प्रिय सेवा है। हम सोच रहे थे हम सलाह लेकर उन्होंने निर्णय किया था कि ये साल ये भाग मैं तो जो है हम जन्म की समाप्ति तक करेंगे। सबको भगवान की कृपा अधिक मात्रा में मिले। अरे दिसंबर 30 है वो तो और दो तीन दिन में खत्म हो जाए। भक्तों की इच्छा भी खुद तपस्या उठाई भगवान को प्रसन्न मिले। ये प्रचार की सेवा भी तपस्या की सेवा है। सारी सेवा तो आप करो तो बड़ी आसान होती है, चार की सेवा में कोई आपको स्वागत करेगा कोई अपमान नहीं करेगा कोई बेइज्जती नहीं करेगा, हमें सिर्फ सहना चाहिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने श्री शास्त्र के तीसरे श्लोक में क्या कहा है, चाहते भी कितना कितना भी सदा सदा हरि का नाम लो। आप ऐसे कितने भक्त का भाव है, कितने कितने सदा हरि सदा हरि का नाम लो। तो क्या आवश्यक है अत्यंत सहनशील घास से भी ज्यादा प्रति और सबको आदर दो बिना आदर भी नहीं रखते। कई बार हम पूछते हैं हम कैसे पहचाने कि हम अध्यात्म उन्नति कर रहे हैं, कि सब श्रद्धावान भक्तों की इच्छा रहती है हम अध्यात्म उन्नति करें। सच बात है सबकी इच्छा है, सीधे भक्तों की इच्छा की अध्यात्म उन्नति करें, सब ईश्वर भक्तों की सवाल है। सबकी इच्छा है कि अध्यात्म उन्नति करो। तो हम कैसे पहचाने हम अध्यात्मिक उन्नति कर रहे हैं? एक पहचान है कितना आपका आकर्षण हरि नाम के प्रति बढ़ रहा है। हरि नाम के प्रति जब आकर्षण बढ़ता है तो ये भाव रहता है कि हम सदा हरि नाम करें। तो प्रभु स्वामी उपदेश के साथ श्लोक में कहते हैं भगवान के जो नाम है अत्यंत मीठे हैं चीनी जैसे, भगवान की जो लीलाएं हैं वो भी अत्यंत मीठी है। और क्योंकि हमारे जीव में अविद्या की बीमारी है हम इसका मीठापन महसूस नहीं कर सकते। अविद्या का अर्थ है अनर्थ का प्रभाव, इसके कारण हम अनंत महिमा की मिठास महसूस नहीं कर सकते। तो आप पूछोगे कोई उपाय है क्या इस समस्या को हल करने के लिए? है उपाय है या नहीं है? है उपाय क्या कहते हैं? निरंतर स्नान कहते हैं। अगर तुम नियमित रूप से हरि नाम करते रहोगे तो यह विद्या की बीमारी दूर हो जाएगी। ठीक है प्रभाव देना लेते तो हमें ये देखना है हरि नाम में हमारी रुचि बढ़ रही है कि नहीं। और गुरु को भी कहना है हरि नाम करोगे रुचि जरूर बढ़ेगी। तो हमें ये देखना है शास्त्रों में शास्त्रों के अध्ययन में रुचि बढ़ेगी। शास्त्र में शास्त्र भगवान की मानी जाना भी साक्षात भगवत बनना शास्त्र की रुचि बढ़नी चाहिए। तो कई बार लोग पूछते हैं हरि नाम में रुचि कैसे बढ़ेगी, शास्त्र में रुचि कैसे बढ़ेगी? जाप करने से रुचि बढ़ेगी, जाप नहीं करोगे तो रुचि नहीं बढ़ेगी। शास्त्र पढ़ोगे रुचि बढ़ेगी, नहीं पढ़ोगे तो नहीं बढ़ेगी। और फिर आगे देखो वहां विनम्रता का भाव सेवा का भाव अनुकूल हो रहा है कि नहीं। तो शास्त्र में अनेक स्थानों में विनम्रता के भाव पर बल दिया गया। तो ये हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हम इन गुणों को अनुभव करें। और भगवान गीता में कहते हैं जो प्रयास करते हैं मुझे प्रसन्न करने के लिए कुछ कमी भी उसमें जो मैं दूर करता। तो इस प्रकार महाराज नामी ने तपस्या की, उनके पुत्र ऋषभदेव जी ने तपस्या पर बल दिया। और शास्त्र में अनेक श्लोक है जहाँ की इस विषय पर बल दिया जाता है। हम सबको प्रयास करना चाहिए तपस्या करके खुशी है भगवान की खुशी करे। और इसके बदले में हमें अच्छी सुख मिले। तो ये प्रचार की सेवा है, ये उत्तम सेवा है वह जीवों को भगवान के चरणों में जोड़ने के लिए। बाबा जी ने कहा कि इस ग्रंथ में इतनी शक्ति है कोई एक श्लोक भी पढ़ लेगा ध्यान से तो सही में सब हो सकता है। आप खुशी होगी जानकर यहाँ बाबा जी के ग्रंथ लगभग 70 भाषाओं और 70 से अधिक भाषा में प्राप्त है। और सारे विश्व में लोग गीता पढ़ रहे हैं, भगवान पढ़ रहे हैं। एक समय था कि केवल भारत में उन्हें पूर्ण ज्ञान था,
एक ग्रह में आप ले सकते हो कि हम गीता रोज पढ़ेंगे।
हमारे गुरु भाई हैं लालन महाराज, उन्होंने गीता डेढ़ सौ बार पढ़ी है। डेढ़ सौ बार कैसे पढ़ा? उन्होंने कहा मैंने खोटा दिया था, दस लोग देना पड़ना छोटे आप दस लोग का छोटा नहीं दे सकते, एक श्लोक का छोटा लो ना दो श्लोक का अनुवाद तात्पर्य के साथ। आप देखोगे जब आप गीता रोज पढ़ोगे आपका ध्यान ही ध्यान तेज होगा, ध्यान ही ध्यान बढ़ेगा, तो सरलता से आप माया का विरोध कर पाओगे। हमारा निर्णय होना चाहिए गीता पढ़ेंगे और दूसरों को भी पढ़ाएंगे। महाराज नागरी जो भाव था भगवान का भगवान को बचा करते हैं नारी को नदी के लिए और जो अंदर जो
वैसे तो वक्त में सब गुण दूर होते हैं लेकिन कुछ एक चीजें दिख जाती है, थोड़ी कुछ एक चीजें वो दिख जाती है और उनसे नहीं बोलते साथ में कोई रहते हैं और उससे धीरे धीरे आदत कभी पड़ जाती है
प्रयास सीक्वेंस है तो हम बताएंगे रचना प्रारंभ या ठीक उसे बताओगे रचना प्रारंभ
के बारे में जाने का
जब हम इंसान को मिलते हैं उसे पूछते हैं शिक्षा दीजिए ऐसे आगे बढ़ ने कहा
अभी
वीडियो बहुत ही आकर्षण रहता है, ये कब समाप्त होगा? बुरी आई कब रहता है? बुरी आई नहीं
लोग
कल 440 गीता गुराते हैं, कल 440 गीता बांटे
थे।
हरे कृष्ण गुरु महाराज, एक बार आध्यात्मिक मार्ग में चलते चलते यदि भौतिक चीजें बाधाएं उत्पन्न करें तो उनका सामना कैसे किया जाए?
श्रद्धा ही आधार है, तो किस किस विषय में श्रद्धा रखना चाहिए और इस श्रद्धा को कैसे डेवलप करें?
श्रद्धा के विषय में सबसे श्रद्धा होनी चाहिए भगवान की वाणी में। भगवान जो कह रहे हैं गीता में सत्य कह रहे हैं, अब हम ग्राह्य हो सत्य हमें गुरु में श्रद्धा रखनी है। गुरु अच्छी हो अगर गुरु आपको वही संदेश है जो परमात्मा में आ रहा है देखा जा रहे हमें 12 महीने मैं माया को मैं सामने रहता है 12 महीने 3 रुपए 24 घंटे
Thank you for listening to His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj. For more information, please visit gkgoswami.com.